ऑन कर। उन्होंने बताया है कि इसको कथा में पहनो और कथा के समय उसको पहन के कथा करो, इसलिए हम उसको कथा में धारण करते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप कल दोबारा ना मत पूछना, कल दूसरा कुछ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कभी देखा ना आपने, कल मैं बैठा था तो कुछ कितने लोगों ने क्या क्या आके पहना ना, वो सब संभाल कर रखता हूँ मैं, फिर टर्न बाय टर्न पहनते रहता हूँ, क्योंकि वो कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है राधा रानी की, भक्तों की प्रेम की कृपा है वो। एक ऐसी माला है, अगर आप मंगल आरती जाओगे ना तो ठाकुर जी को देखना नहीं चाहिए, निहारना चाहिए। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को कैसे निहारती है, वैसे निहारना चाहिए ठाकुर जी को, ऊपर से नीचे तक, बड़े दूर हो पास हो तो। उनके गले में एक माला होती है, वो धागे से बनती है, और एक कपड़े के फूल में वो बनाते हैं, जैसे दूसरा लगेगा कि कमलों गुलाब की माला है, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा गुलाब रहेगा एक, फिर एक गुलाब ऐसा रहेगा, उसके ऊपर एक ऑर्नामेंट रहेगा, उसके ऊपर एक मोती रहेगा, फिर धागे से उसको बांधा रहेगा, ऐसा करके एक गुलाब एक गुलाब एक गुलाब ऐसा करके, एक पेंडेंट रहेगा, फिर एक गुलाब ऐसा करके, गले में ऐसे माला रहेगी, लेकिन सब ऐसे गुलाब 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 रहेंगे, लेकिन वो गुलाब नहीं है, वो क्लॉथ होता है, सुंदर क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है। क्यों कपड़ा होता है, गुलाब क्यों नहीं पहनते अभी? ओढ़न षष्ठी ये स्थिति से जो दिसंबर में आती है, ओढ़न षष्ठी से ठंड आरंभ होती है, तो ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार करना बंद कर देते हैं ब्रज में, कम से कम बम्बई में तो क्या है, बारह महीने गर्मी, कभी भी फूल पहनो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर ठंड पड़ती है तो ओढ़न षष्ठी से फूलों का श्रृंगार करना बंद कर देते हैं। अभी देखो आप, मुझे कल माला पहना है ना तो मुझे ठंड लगने लगी, क्योंकि वो फूलों का एक प्रभाव होता है। तो ओढ़न षष्ठी से वसंत पंचमी तक, वसंत पंचमी के बाद सोचते हैं कि अभी गर्मी शुरू हो जाएगी, तब तक सारा श्रृंगार ऐसे ही होता है, कपड़ों का या मोतियों का, सारी मालाएं मोतियों की रहेगी, हर प्रकार के अलंकार रहेंगे, लेकिन फूलों की माला नहीं रहेगी। तो जो फूलों की माला जैसे दिखती है, वो माला जो है वो कपड़े से बनती है। तो वो कल मुझे आके किसी ने पहना है, आप देखा ना गुलाब गुलाब भी पहना था मैंने, वो हमारी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र केवल 86 साल है, उनका नाम है कुसुमलता देवी, वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है, वो मुझे बड़े भैया मानती है। मैं भी उसके भाव का आदर करता हूँ। तो उन्होंने मुझे वो कल माला पहनाई थी, वो भी कभी कभी प्रकट होगी यहाँ पर। वो माला राधा रानी और श्याम सुंदर जी सुबह से श्रृंगार से लेकर रात के शयन तक पहनते हैं। बाकी सराय माला माला आप जो देते हैं ना उनको, वैसे उधर चरणों में रखते हैं और टेक के आपको दे देते हैं, वही महाप्रसादी में, वो भी उसमें पावर है, ऐसा नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो श्रृंगार करने के बाद बार बार आपकी माला उनको पहना नहीं सकते। कृष्ण बलराम मंदिर में भी कैसा होता है, नीचे एक उत्सव विग्रह होते हैं, आप जो भी माला देंगे उत्सव विग्रह को पहचान दे देंगे, वो अभिन्न है, वो उनको पहनाते हैं फिर आपको वापस दे देते हैं, फिर आप महाप्रसाद के रूप में पहनते हैं। लेकिन राधा रानी और श्याम सुंदर के गले में जो माला होती है वो दिन भर वैसे रहती है, गर्मी में वो दो बार माला पहनाते हैं, क्योंकि वो 12 बजे तक सूख जाती है, तो शयन कर दोपहर में शयन करते हैं तो वो माला निकालते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सूख जाती है, फिर 4:30 की आरती के पहले और एक माला पहनते हैं उनको, लेकिन दो ही माला प्रत्यक्ष हैं, बहुत मोटी होती है वो। तो वो जो पहनाया था कल वो माला है। फिर मैं चित्रकूट में प्रवचन कर रहा था तो ब्रिजवासी भी उसमें आए थे चित्रकूट यात्रा में, उन्होंने बड़ी बहुत अद्भुत एक माला पहनाई मुझे, जो राधा रानी के शरीर पर थी, इधर से इधर तक है वो, इतनी मूल्यवान है कि मुझे बार बार उसको पहनने का वो ऐसा भाव भी नहीं होता है कि इतनी बड़ी माला मैं कैसे पहनूं, लेकिन ये ब्रजवासियों का प्रेम है। वो कल मैं उसी माता जी को मिलने गया था उधर ब्रजेश्वर महादेव के पास, तो राधा रानी के हाथ में जो पुष्प का गुच्छा था उन्होंने मुझे देने के लिए निकाल के रखा था, लेकिन एक दिन पहले ही मिलने गया तो मुझे दे दिया, जब आज ही आ गए आज ही ले लो, मुझे लगा अभी कल कुछ नहीं देंगे, तो कल वो गुलाबी माला लेके आए दूसरी। मतलब ब्रजवासियों के पास में यही देने के लिए होता है, वो शायद उनके पास धन नहीं होगा, बड़ा नाम नहीं होगा, बड़ा अधिकार नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपका कुछ काम करवाने के लिए, लेकिन राधा रानी की कृपा भरपूर उनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए ब्रजवासी बहुत धनी होते हैं, उनके पास भक्ति का धन होता है जो किसी भी धन के सामने सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि बाकी सारा जो ऐश्वर्य होता है ना वो समय के साथ में पाबंद है, मतलब समय का प्रभाव से रहता है वो सारा जो धन होता है, मतलब क्या होता है उसका अर्थ क्या है उसका, समय के साथ वो सारे ऐश्वर्य समाप्त हो जाते हैं। यस और नो? अभी देखो आप लोग, हम लोग डॉक्टर हैं है ना, हमारे पास मेडिकल नॉलेज है, जब थोड़ा बुढ़े हो जाएंगे ना तो बच्चे का नाम भी भूल जाएंगे तो मेडिकल कैसे याद रहेगा। मेरी माँ को 8 संतान हुई और मैं 8वां हूँ, तो माँ को कोई बच्चे का नाम भूल सकती है क्या? माँ दुनिया को सब भूल सकते हैं, बच्चों का नाम नहीं भूल सकती, लेकिन ऐसी उम्र हो गई थी कि हमारा नाम भी भूल गई थी, वो कुछ भी बोलती थी, मामा का नाम बोलती थी मुझे देखकर कि आप वो हो क्या, मतलब उसके मन में वो है कि मेरा बच्चा है लेकिन वो नाम बता रही है मामा का। ऐसी स्थिति होती है, क्यों? क्योंकि काल के द्वारा प्रभावित होकर यहाँ का सारा ईश्वर जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी आज आपके पास जो भी कुछ है उस पर ज़्यादा गर्व मत करना, क्योंकि कल वो नष्ट होने वाला है। आज विद्या का गर्व है तो विस्मृति में चला जाएगा, आज यौवन का गर्व है आपको, सौंदर्य का गर्व है, वो निश्चित रूप से चला जाएगा। आपके काले घुंघराले बाल पर गर्व है तो वो सफ़ेद हो जाएंगे एक दिन, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है तो बीमार हो जाएंगे आप एक दिन। कालोस्मी, काल के रूप में मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, तो काल के रूप में, काल के प्रभाव में प्रभावित जो भी वस्तुएं आपके पास में है कभी भी उस पर गर्व मत करना, और जो काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं है वही चीज आपके साथ जाएगी, वही आपकी सही दौलत, सही ऐश्वर्य आपका वही होगा। ये आपको मेरी विनती है, क्योंकि ये सब बातें लगता है क्या प्रभु जी कथा सुनाने को आए थे और अब फिलॉसफी सुना रहे हैं, इतनी हैवी हैवी बातें दिल को दबा रही है। लेकिन ये सब समझने के बिना आगे की लीला समझ में कैसे आएगी? ये समझे बिना अगर लीला सुनेंगे तो लीला केवल मनोरंजन होगा, आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं होगा। मन को पवित्र किए बिना अगर कोई भगवान की लीला सुनते हैं तो उसका परिणाम केवल मनोरंजन होगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए कथा के साथ साथ सिद्धांत बताना बहुत आवश्यक है, जैसे सब्जी में नमक डालना जरूरी है वैसे ही कथा में सिद्धांत आना ही चाहिए, क्योंकि भगवान की हर कथा जो है वो सिद्धांत से भरी हुई है, उपदेश से, शिक्षा से भरी हुई है। इसलिए मैं यह की बात कहाँ से निकली थी कि ब्रजवासियों के पास में शायद आप जैसा विद्या नहीं होगी, आप जैसा धन नहीं होगा, सौंदर्य कपड़े और रुबाब नहीं होगा, लेकिन उनके पास में वो धन है जिसके लिए भगवान भी लालायित हैं, प्रेम का धन। किसी भी ब्रजवासी को मिलो आप, अगर आपको वो आशीर्वाद दे रहा है तो क्या आशीर्वाद देता है? अरे राधा रानी बड़ी कृपा करे आपके ऊपर, राधा रानी बार बार बुलाए, खूब भक्ति फले फूले, हमारा परिवार भक्ति में रहे, राधा रानी बड़ी कृपा करें। ये नहीं बोलते कि आपको नौकरी मिल जाए, को बच्चा हो जाए, नहीं मिलते। भिखारी हो या गोस्वामी हो, आशीर्वाद तो यही देगा और यही आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो शहर का जीवन है ना वो बहुत ऐसा भ्रम में रहता है पूरा, हम लोग ऐसे बेकार की चीज़ों में गर्व करते रहते हैं, अपने अधिकार के ऊपर, अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस, पावर, अथॉरिटी, विद्या, धन, सबसे अधिक गर्व धन पे करते हैं। धन होगा तो एकदम क्या बोलते हैं उल्लू व्यक्ति भी होगा ना, और धनी होगा तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, वो भी अपने आप को बड़ा समझता है। दुनिया में प्रगति का लक्षण धन बना हुआ है, धन धन और धन धन होगा तो आदमी कितना भी लुच्चा क्यों ना हो सब लोग सलाम करते हैं उसको, लेकिन सच्चा धन जो है वो आत्मा का धन है। अभी आप सब लोग बरसाने आए हो तो कुछ धाम का महिमा जो है ना वो आपको बताना जरूरी है। एक शास्त्र है जिसका नाम है आदि वराह पुराण। ओके, आदि वराह पुराण कैसे उत्पन्न हो गया? जब वराह देव को मारने के लिए, सॉरी, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह देव का जन्म लिया, अवतार लिया, उनको गर्भोदक सागर के तले से निकाला छलांग लगा के, कीचड़ में, कीचड़ भी जो भी कुछ हो जल के अंदर, पृथ्वी को अपने सिंगों पर रखा, जल से बाहर निकाला, कक्षा में रखा, उसके बाद में हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसको मारा, फिर भगवान विश्राम फरमाने के लिए जमुना नदी के किनारे आए। तब जो भूमि देवी को उन्होंने बचाया था, वो भूमि देवी वहाँ देवी के रूप में प्रकट होती है, आज भी वो घाट मथुरा में है, विश्राम घाट, वहाँ पर देवी रूप में पृथ्वी आती है, भूमि देवी, और भगवान से पूछती है कि मैंने आपको पूछा था एक प्रश्न जब आप मुझे उठाकर ले जा रहे थे कि आप मुझे कहाँ रखोगे, तो भगवान ने कहा मैं आपको हरियाली में, हरियाली जहाँ होगी वहाँ रखूँगा। तो उनको लगा हरियाली तो मेरे पे होती है ना पृथ्वी के रूप में, और कौन सी ऐसी भूमि है जिसमें हरियाली होती है और जिसमें मुझे आप रखोगे, मैं ही हरियाली का उगम हूँ और आप मुझे रखेंगे, मुझे हरियाली में रखोगे। तो बोलते बाद में बताऊँगा आपको सब, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ मिशन कंप्लीट करने दो मुझे, मिशन हिरण्याक्ष। तो फिर वो प्रश्न था पृथ्वी के, और पृथ्वी ने देखा कि एक हरियाली भरा हुआ एक भूमि प्रकट हुई उनकी आंखों के सामने। जैसे आप जो जाते हैं ना भरतपुर से आगे जाते हैं तो मथुरा का दर्शन होने लगता है, स्टेशन आते तो हाँ अभी वृंदावन आ रहा है, मथुरा आ रहा है, वैसे उनको पता चला कि अभी मेरे रखने की जगह आ रही है। तो बहुत सुंदर दिव्य जगह दिखाई पड़ी उनको, बहुत सारे वृक्ष थे उसके अंदर, और भगवान ने उनको उस पर रखा, और भगवान ने फिर युद्ध शुरू किया। फिर देवी देखती रही युद्ध हो रहा है, फिर भगवान ने युद्ध किया, शांत हो गए, बैठे विश्राम करने के लिए, विश्राम घाट नाम है उसका, यमुना जी के ऊपर भगवान ऐसे आराम फरमा रहे थे। पृथ्वी देव के आगे प्रश्न पूछती है, और वो पृथ्वी देवी और भगवान वराह देव के बीच में जो संवाद हुआ है उसका नाम है आदि वराह पुराण। उसमें भगवान ने इतनी अद्भुत कहानियां बताई है, इतनी अद्भुत कहानी बताई है, तो इतने विस्तार में भगवान ने पूरे मथुरा मंडल का वर्णन किया उसके अंदर। तो वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ, बहुत सारा लंबा वर्णन है। और काम्यवन, वृंदावन, मथुरा, भांडीर वन, जितने भी वन हैं सभी वनों की कहानी भगवान ने बताई है वराह देव ने। इसलिए आदि वराह पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो अवेलेबल भी नहीं है, गीता प्रेस में भी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो श्लोक लोग इधर दिखते हैं उसमें भी अवेलेबल है खाली बस। ब्रजमंडल भूगोलम शेषनाग फणम्बर कुमुदाक्षम महाश्रेष्ठम सर्वेशां मध्य संस्थितम। ब्रजमंडल जो है ये शेषनाग के फणों के मध्य एक बहुत प्रसिद्ध मध्य है, फन उसका नाम कुमुद है। शेषनाग के कितने फन हैं? 1000 फन हैं। 1000 फन पे वो सारा जो ब्रह्मांड है उसको धारण करते हैं, उसके बीच का जो फन है उसको कुमुद कहते हैं, और वो बीच के फन में 84 को उसका ब्रजमंडल स्थित है। देखो आप सब लोग किधर हो? शेषनाग के कुमुद नाम के बीच वाले फन पे हो पता होना जरूरी है। और ये जो ब्रजमंडल है ये सामान्य भूमि नहीं है, आप विमान में हो, विमान अर्थात जो पृथ्वी है ना उसके ऊपर हुआ, क्योंकि ब्रजमंडल उसके ऊपर है। ये प्रलय के काल नष्ट, समय नष्ट नहीं होता है, वैसे के वैसा रहता है। भगवान ने पृथ्वी को बताया है कि जिस पर आपको रखा है ना मैंने, वो प्रलय काल में नष्ट नहीं होता है, आप सब नष्ट हो जाओगे, लेकिन वो भूमि नष्ट नहीं होगी। फिर क्या बोला है? तस्यो परिस्थितम लोकम सर्वस्थान महाफलम कृष्ण लीला विहारार्थ उच्च स्थान विराजितम। क्या कहा है? उस फन के ऊपरी भाग में सकल स्थान के महाफल स्वरूप श्री कृष्ण लीला के विलास निमित्त 84 कोस परिमित उच्च स्थान विराजित है। बहुत हिंदी हैवी है, इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण लीला के अनुकूल एक भूमि 84 कोस परिमित उच्च स्थान उसमें विराजित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसकी प्रदक्षिणा करने से देखो क्या लिखा है, चतुराष्टक क्रोशेन परिपूर्ण विराजितम अस्य प्रदक्षिणिम कुर्वन धन धान्य सुखम लभेत। इनकी प्रदक्षिणा करने से धन धान्य सुख लाभ होता है, भक्ति का लाभ होता है। आगे क्या लिखा है, दानार्च दान अर्च वासतो लोको विष्णु लोकम अवाप्नुयात। यहां पर आने के बाद में दान अर्चा और वास ये जो करेगा उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। आपको ये सब कुछ जग के सुनना है, नहीं तो ये वाक्य आपके निद्रा में चला गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर रहते हुए जो भक्तिपूर्ण कार्य करेगा, भगवान नाम लेगा, कीर्तन करेगा, कथा सुनेगा, वैष्णवों की सेवा करेगा, प्रसाद पाएगा, दर्शन करेगा, जो भी कार्य करेगा, दान अर्चा वास, वास में ये सब आ गया सब कुछ। तो इसलिए यहाँ का वास कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब जगह रहते हैं, मैं भी बहुत घूमते रहता हूँ इधर उधर, लेकिन सब जगह पर धाम नहीं होता है। कभी कभी प्रचार के लिए कहीं जाना पड़ता है और कभी कभी धाम में भी आना पड़ता है सेवा के लिए। लेकिन यहाँ पे आना और वहाँ जाना, कथा तो वहाँ ही भी कर रहा हूँ यहाँ पर भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कथा करना और वहाँ कथा करना में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे भी पता चलता है यहाँ बैठने पर मैं क्या बोलता हूँ, कभी कभी सोचा भी नहीं मैंने, ऐसे सब बातें मैं बोल जाता हूँ। फिर जाके खुद मैं रूम पे जाके लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तो मैंने कहा ही नहीं है, ना सोचा था ना कहा नहीं मैंने, भगवान ने ही बोला तो भगवान का वाक्य मैं लिख के रखता हूँ ताकि अगले प्रवचन में काम आएगा। तो यहाँ की महिमा है, यहाँ हम लेते हैं और यहाँ से बाहर जाकर देते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वहाँ पर भी लेते हैं लेकिन यहाँ पर लेने का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भूमि ऐसी है, भगवत धाम है, ये भगवान की प्रत्यक्ष लीला स्थली है। इसके बारे में बाहर जाकर बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ ही बैठकर बोलते हैं, जब यहाँ ही लीला हो रही है और अभी नहीं, 5-4 साल पहले नहीं हुई है, अभी भी हो रही है, जहाँ हम बैठे हैं अभी भी यहाँ लीला हो रही है, हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन हम लीला स्थली में लीला जहाँ हो रही है वहीं बैठे हुए हैं। उसका जो दिव्य प्रभाव है उसके द्वारा आप सब लोग लिप्त हो, यू आर ऑल एनवेलप्ड इन दैट एटमोस्फियर, प्लीज अंडरस्टैंड। चाहे दांतों की सेवा कर रहे हो, आंखों की सेवा कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हर समय उस कृपा के वातावरण से लिप्त हो। कभी कभी ना समझ में नहीं आता है, बालक को गोद में लेके 2 महीने के बालक को दिल्ली लेके जाओ, कलकत्ता लेके जाओ या किधर भी लेके जाओ, उसको कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जाएगा उसका परिणाम तो उस पर होगा। नन्हे नन्हे बालक को ब्रिज में लेके आओगे तो वो भी संस्कार होंगे, नन्हे बालक को दिल्ली में पोल्यूशन में ले जाओगे तो उसके भी संस्कार होंगे। पता है कि नहीं होते हैं? हम जाने ना अनजाने में जिस वातावरण में जाते हैं उसके संस्कार होते ही है। शराब के अड्डे के पास दूर से आपको वो शराब की बू आने लगेगी और वहां की चेतना आपको प्रभावित करेगी, दिल को डिस्टर्ब करेगी। तो उस प्रकार से दान अर्चा वासतो लोको विष्णु लोकम अवाप्नुयात, अवाप्नुयात का मतलब है प्राप्त होता है। आगे क्या लिखा है, आवासन म्रियते अत्रेह पुनर्जन्म न विद्यते। एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा इसमें, इसमें ऐसा नहीं लिखा है जन्म जन्म जन्मानी म्रियते त्रेह, ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है कि यहां पर जन्म होने के बाद में फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा लिखा नहीं है। क्या लिखा है ध्यान से सुनना, आवासन आवासन म्रियते त्रेह, यहां पर वास करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हम लोग बेनिफिट में आ गए ना, हमारा जन्म तो यहाँ हुआ नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, वास, ब्रजवास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहाने कुछ भी होंगे आपके, नहीं नहीं दुल्हा दुल्हन श्री जी के दर्शन करने आए होंगे, या आप लोग कैंप के बहाने आए होंगे, कोई ऐसे ही यात्रा करने के लिए आए होंगे, कोई कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए आए होंगे, कुंड साफ करना है किसी को, किसी का कुंड का प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे गौरांग प्रभु का, हमारा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, 11 कुंड हमने लिए हैं, साफ करने के लिए आते होंगे, और किसी काम से आते होंगे आप, पेशेंट को देखने के लिए कभी कभी आते हैं इधर, बाबा महाराजाओं को देखने के लिए। लेकिन हर समय पर आप जब आते हैं तो धाम आपको आवृत्त कर लेता है और धाम आपको वास देता है। और जब हम आत्मा से, इच्छा से, समझ बूझ कर इस धाम का निवास लेते हैं तो आपको उसी धाम से, धाम वास से पुनर्जन्म कैंसिल हो जाएगा आपका। कितने भी दिन हो, 8 दिन हो, 10 दिन हो, या 6 महीने हो, या परमानेंट यहाँ नौकरी लेकर रह रहे हो, या जन्म ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ का वास जो करता है उसे दोबारा पुनर्जन्म की नौबत नहीं आती है। अभी यहाँ पर आने के बाद भी अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का वास हम नहीं कर रहे हैं। बिजनेस के लिए आते हैं, धन के लिए आते हैं, कुछ और भावना लेके आते हैं, या यहाँ पर आकर अपराध कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं, झगड़ा करते हैं किसी का, इधर उधर भक्तों का, तो फिर वो वास जो है ना वो उस समय खत्म हो जाता है इमीडिएटली। उपवास के दिन आप लोगों को सबको अनुभव होगा ही, उपवास के दिन जिलेबी का विचार मन में आया, उपवास खंडित हो गया आपका। उपवास के दिन लड्डू की, बुद्धि के लड्डू की याद आई, गुलाब जाम की याद आई, रोटी की याद आई, पराठे की याद आई, याद आने से ही आपका संकल्प टूट गया उधर। क्योंकि उपवास जो है ना वो मन से होता है, उपवास मन से हम भगवान के पास में रहने का प्रयास कर रहे हैं, उप निकट भगवान के वास करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अन्न त्याग कर रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने का, वेगों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विचार भी मन में आया, वही उपवास समाप्त हो गया, भले आपने रोटी खाई नहीं होगी। उसी प्रकार से धाम में भगवान की चेतना से, अन्य भाव से निवास करना, धाम वास भंग हो गया उधर। और फिर उस समय, उस उतने मिनटों में, घंटों में जो भी आप कोई करोगे कार्य, वो आपको कर्मों से बांध देगा, लिप्त करेगा, अपराध में जाएगा तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और आगे देखिए, हाँ देखो बेस्ट, उधर ही नेक्स्ट श्लोक आ रहे हैं। पुण्यम लक्ष्य गुणम लब्ध्वा कृते अस्मिन् ब्रजमंडले कृष्णेन निर्मिता तीर्था सार्ध द्वय सहस्त्रकाः। यहाँ पर जो भी कार्य आप करते हैं उसका लक्ष्य गुणम, एक लक्ष्य गुना उसका परिणाम होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आदिवारा पुराण, मत्स्य पुराण, आदिवारा पुराण में भगवान बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के नाम का जप किया तो भी उसका एक लक्ष्य गुना लाभ मिलेगा, सोते सोते करेंगे उसका भी एक लक्ष्य गुना लाभ मिलेगा, ध्यान से करेंगे, प्रेम से पुकारते हुए करेंगे, एकाग्र होकर, भाव विभोर होकर करेंगे, उसका भी एक लक्ष्य गुना मिलेगा। अपराध करोगे तो 1:1 नहीं होगा, एक लक्ष्य गुना उसका लाभ, लाभ यानी नुकसान करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का निवास सावधानी से करना चाहिए। यहाँ का निवास कभी भी हमको असावधान होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि असावधानी में गलतियाँ होती है, असावधानी में अपराध होते हैं, इसलिए उसको बचना चाहिए। बार बार हमारा काम यही है, ये प्रवचन का उद्देश्य भी यही है। दिन में भी कई सेवा करते करते बरसाने में मन भटक गया, शाम को आकर जगह पर बैठेगा, वो बैठना चाहिए। सावधान करना, सुई टोचना, हाँ ये हमारा काम है। किस लिए कर रहे हैं ये सब? ताकि आपका यहाँ का लव लव मात्र, क्षण क्षण, मिनट मिनट, घंटे घंटे, दिन दिन जो है वो पूरे लाभ के साथ आपको घर में विदा करें। यहाँ पर आपको जितना लाभ आपको अपेक्षित है वो मिलना चाहिए, वो सारा मिले और किसी भी गलती से ना मिले, ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग आपको बार बार याद दिलाते हैं। बाकी सेवा तो हो ही रही है, हम भी करते हैं और भी लोग करते हैं। फर्क इतना है कि हम लोग राधा कृष्ण चेतना में करने का प्रयास कर रहे हैं, संतों के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वचन, उनके उपदेश के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो विनोद बाबा जी जो कल बोल रहे थे ना बात, इसमें हमको गर्व होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनका परसेप्शन है, ये उनकी अनुभूति है, उन्होंने यहाँ पर कई कैंप देखे होंगे। हमें गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रमाण मानना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो अपेक्षा उनकी हमारे से है। जब हमारा गौरव होता है ना, कभी आपको बोलेंगे आप बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो, तो आपको वो लेना कैसे चाहिए कि मैं दयालु हो या हूँ या होना चाहिए, ऐसी ये बोलने वाले की अपेक्षा है मुझसे। मैं दयालु हूँ समझ का गर्व करने की जरूरत नहीं है, कि जब बोल रहे हैं कि दयालु है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये मुझसे दयालु होने की अपेक्षा कर रहे हैं। सेवा भावी, बहुत सेवा भावी, कितनी सेवा करते हैं, अर्थात ये मुझसे सेवा भावी होने की अपेक्षा कर रहे हैं। स्तुति को ऐसे सुनना चाहिए सदैव। तो वो एक प्रकार से आप सबकी तारीफ कर रहे थे। हमको उसमें क्या लेना है कि ये अनन्य भाव का कैंप है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा है, ये हमको सोचना है। तो पुण्य लक्ष्य गुणम लब्ध्वा कृते अस्मिन् ब्रजमंडले कृष्णेन निर्मितास तीर्था सार्धद्वय सहस्र का। इसमें लिखा है कि इस ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित 25,000 तीर्थ है। मुझे पढ़कर बड़ा आश्चर्य हो गया, क्योंकि मैंने रूप गोस्वामी के ग्रंथ में कुछ और ही पढ़ा है जो मैं अभी आगे दिखाता हूँ। आदिवारा पुराण, इसका कोट रूप गोस्वामी करते हैं, क्या लिखा है, षष्टि कोटि सहस्राणी षष्टि कोटि शतानि च तीर्थ संख्या च वसुदे मथुरायाम मयोदिता। पृथ्वी देवी को वरादेव बता रहे हैं कि हे वसुधे, मथुरा मंडल में 6,600 करोड़ तीर्थ हैं, यानी 6,600 करोड़ यानी 66 अब्ज तीर्थ हैं। अभी वही आदिवारा पुराण में क्या है, वही मत्स्य पुराण में क्या है, इसमें अलग अलग भेद क्यों है, क्योंकि जैसा हम आगे बढ़ते हैं वैसे हमको और डेप्थ में नॉलेज पड़ता है। मेरा तो ऐसा अनुभूति है कि यहाँ के कण कण में लीला हुई है भगवान की, ऐसा कोई कण नहीं रज का जहाँ पर भगवान की लीला नहीं हुई है। खाली अभी कोई मंदिर बनाए, कोई आश्रम बनाए, कोई गेस्ट हाउस बनाए, कोई कुछ बनाए, कोई होटल बनाए, लेकिन वो सारे तीर्थ स्थलियाँ हैं, हमारी कैपेसिटी भी नहीं समझने की, इतने तीर्थ स्थलियाँ और इतने लीलाएँ यहाँ पर हैं। इसलिए जो भगवान का ग्रंथ लिखते हैं ना भगवान के विषय में, वो कहते हैं कि कैसे लिख पाएंगे वो, जिनको समझना नामुमकिन है, जो अधोक्षज है, जो इंद्रियों को द्वारा समझने नामुमकिन है उनको समझना, वो भगवान की लीलाएं कैसे हम लिखें। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे साधु प्रार्थना करते हैं भगवान से, अभी आपको ही जो बताना है वही आप प्रकट करो, वही हम लिखेंगे, उसी प्रेरणा दो, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से बिना, भगवान की कृपा के बिना भगवान की लीला प्रकट नहीं हो सकती है, ना आप कह सकते हो ना सुन सकते हो। जो भगवान को सुनाना है वही वक्ता के मुंह से आप सुनोगे, हुए जो भगवान को नहीं सुनाना है वो वक्ता कितना भी तैयारी करके आएगा उस विषय तक पहुंचेगा नहीं। मैं एक बार राधाष्टमी ना अहमदनगर में गया था, क्या बताऊं आपको, मुझे बहुत सारा बताना था, लेकिन जितना भी मैंने प्रयास किया ना कथा तक मैं पहुंचा ही नहीं, खाली प्रस्तावना ही करता रहा हूं। मैं बहुत विचार किया उसके ऊपर, तो समझ में आया कि भगवान ही तय करते हैं क्या किसको सुनाना है। कथाकार तो बहुत सारी तैयारी नोटबुक सब लेके आता है, लेकिन उसके मुख से वही निकलता है जो जो श्रोताओं की योग्यता होती है, जो जो कृपा होती है वही प्रकट होता है। ये हमारा 100% विश्वास है इस बात का, 100%। तैयारी की हुई चीज़ भूल जाते हैं हम, और बिना तैयारी की चीज़ याद आ जाती है, क्योंकि श्रोताओं की चेतना कैसी है, श्रोताओं की उत्सुकता कैसी है, मुमुक्षुता कैसी है, हाँ इंक्वायरी क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दैट वर्ड, हाँ इंक्विजिटिव, चिकित्सक वृत्ति कैसी है आपकी, कितना आप ढूंढ रहे हो, कितना प्यासे हो, प्यासे होते हो पानी देंगे ना आपको, पानी पी के आएंगे तो पानी कैसे देंगे आप, प्यासे होंगे तो ही पानी मिलेगा, भूखे होंगे तो ही भोजन मिलेगा, भरे पेट पे कोई भोजन देता नहीं ना कोई खाता है। इसी प्रकार से कथा जो है वो भगवान कहते हैं, इस बात पर कोई संदेह नहीं है। देखो न विद्यते च पाताले न अंतरिक्षे न मानुषे समस्त मथुराया हिम प्रियम मम वसुंधरे। हे वसुंधरे, आकाश पाताल और मनुष्य लोक में कहीं भी मथुरा जैसा, मथुरा मंडल जैसा तीर्थ विद्यमान तीर्थ नहीं है, ये मथुरा मुझे समस्त लोकों में प्रिय है। क्या क्या कहें आपको, मथुराया परम क्षेत्रम त्रैलोक्य नहि विद्यते यस्या वसम्य अहम देवी मथुरांतु सर्वदा। मथुरा मंडल के समान श्रेष्ठ तीर्थ त्रिलोक में कहीं भी नहीं है, और मैं यहाँ सदैव निवास करता हूँ, नित्य मेरा निवास यहाँ रहता है। लीला करके आके गए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो चले गए, वो नित्य निवास और लीला यहाँ पर नित्य लीला करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ध्रुव जी को बता रहे, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटे शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यता हरे। हे ध्रुव जी, आप तत्काल यमुना के पवित्र तट पे मधुवन पे चले जाओ, वहां पर श्री हरि का नित्य निवास है, वहीं पर आपका भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मथुरायाम कृतम पाप, अभी आगे देखो, अन्यत्र ही कृतम पापम, सिंपल है, अन्यत्र किया हुआ पाप, अन्यत्र ही कृतम पापम, मथुरायाम विनश्यति, सिंपल, यहाँ आके नष्ट हो जाता है। ज्ञातो ज्ञानतो अज्ञानतो वापी यत पापम समुपार्जितम, अर्थात अन्य स्थान में जाने अनजाने में ज्ञातो अज्ञानतो कि वे पाप जो है मथुरा में आते ही विनष्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आते ही सारे संचित नष्ट हो जाते हैं। फिर भी प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि जमा किया हुआ नष्ट हो जाता है, प्रवृत्ति थोड़ी नष्ट होती है। जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर अभी तक पना करके रखी हुई है, वो आसानी से नष्ट नहीं होती है, उसके लिए भजन करना पड़ता है। अपने आप जो जमा किया हुआ पाप पुण्य है वो नष्ट होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो है, प्रोक्लिविटी, उसको कूट कहते हैं, कूट, वो जो कूट है वो साधना से प्रयास पूर्वक नष्ट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर धोते हैं, फिर मुंबई जाके फिर जमा करते हैं, फिर आके धोते हैं, फिर जमा करते हैं। जब जमा करना बंद करेंगे तो धोने की आवश्यकता क्या बचेगी? तो ये जो भाव है नष्ट करने का, वो यहाँ पर हमको प्राप्त करना है। धाम में क्यों आते हैं? केवल धुलाई करने के लिए नहीं आते हैं, गंदगी पैदा ही ना हो, ये भावना और ये प्रक्रिया सीखने को, आत्मसात करने के लिए धाम में आते हैं। इसलिए यहाँ पर किया हुआ जो साधन आपका है, हरे कृष्णा बोला आपने, एक लक्ष्य बार आपको उसका लाभ क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको जल्दी जल्दी उसको ले लो, जल्दी जल्दी, टाइम पास मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। अभी देखो, मथुरायाम कृतम पापम, अभी क्या अर्थ हो गया इसका? मथुरा में आकर, मथुरा मंडल ब्रज मंडल में आकर जो पाप कर रहे हैं उसका क्या होगा? मथुरायाम विनश्यति, वो भी यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षाक्षम स्थित्वा तत्र लभेन नरः, मथुरा में किए हुए पाप मथुरा में विनष्ट हो जाते हैं, तथा मथुरा में वास करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष भी प्राप्त हो जाते हैं, भक्ति भी प्राप्त होती है, विष्णु लोक में प्रवेश प्राप्त होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। बहु जन्मानि पापानि संचितानि निवर्तते निवर्तन्ते मथुरा प्रभवम पापम नश्यति क्षण मात्रतः, बहुत जन्मों के संचित पाप मथुरा में आने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अभी देखो एक श्लोक है इधर, वो भी नहीं मिलेगा, मिलेगा कोई बात नहीं, हाँ मिला मिला, ध्यान से सुनना। मथुरायाम वसिष्यामि यस्यामि मथुराम अहम इति यस्य भवेत बुद्धि ही सोपि बंधात प्रमुच्यते। मैं मथुरा जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा, मैं बरसाने जाऊंगा, मैं कैंप में जाऊंगा, मैं कैंप में जाऊंगी, मुझे जाना है जाना है, मथुरा में विवास करूंगा, वहां जाके सेवा करूंगा, ऐसी जिसकी इच्छा और बुद्धि होती है वह भी सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका प्रमाण है हमारे पास, 20 विद्यार्थिनियां और 2 टीचर्स, उनका टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ। मैंने ओरिएंटेशन में सबसे बढ़िया प्रवचन उनको दिया, कुछ प्लान नहीं था, लेकिन उनको सब सारी कहानी बताई, वो पुरानी पुरानी कैंप की कहानी बताई, और इतने प्रेरित हो गए थे विद्यार्थियां, आपके वार्ड में आपको क्या सेवा करना है सब बताया था उनको मैंने, उनका टिकट ही कैंसिल नहीं हुआ। रो रहे हैं वो, प्रभु जी हमें प्रार्थना करो, राधा रानी हमको बुलाए, कैसा चमत्कार हो जाए कि हम अभी भी आ जाएं। रोज मैसेज भेजते मुझे, तो मैं कहता हूँ मैं आपके लिए दिल से हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि राधा रानी आपको जल्दी बुलाए, और जब भी आपको बुलाए मैं भी आने की कोशिश करूँगा, ऐसा भी उनको बताया है। तो सांत्वना ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सर्वोच्च चेतना में है। जैसे हरिदास ठाकुर ने जेल में बंद किए हुए उनको बताया था कि आप जैसे हो वैसे रहो, तो उन्होंने बोला महाराज हमको जेल में रखा हुआ है, हमको जेल से मुक्त होना है, आप आशीर्वाद दे रहे हो कि जैसे हो वैसे रहो। अरे बाबा मैं आपको वैसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, आज जैसे भगवान के लिए आप तड़प रहे हो वो स्थिति आपकी बनी रहे, ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको। आप ये सलाखों के पीछे रहो ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सलाखों के पीछे रहते हुए आज जिस प्रकार से आप भगवान के लिए तड़प रहे हो वो आपकी चेतना बनी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो मैं उनको ये आशीर्वाद बोल नहीं सकता क्योंकि वो रो रही है, तो मैंने कहा जिस स्थिति में आप हो वैसे ही आपको रहे, ये मैं मन में सोच रहा हूँ, लेकिन उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आ जाए बेचारे आ जाए। लेकिन जितना समय वो तड़पेंगे उतना गारंटी है उनके लिए, शायद आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हो तो रिलैक्स हो जाएंगे आप, इतना नहीं तड़पेंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं वो आपसे अधिक तड़पेंगे, आपसे अधिक लाभ लेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सारा गेम जो है ना वो भावना का है, शरीर कहाँ पर है उस पर नहीं है, अगर शरीर वहीं है जहाँ आपकी भावना है तो आपको लाभ होगा, अगर शरीर जहाँ है वहाँ भावना नहीं है कहीं और है तो आप वहीं के हैं जहाँ पर भावना है। और भाग्य की बात क्या है, अगर शरीर वही है भावना भी वही है सब कुछ वही है तो आप यशस्वी हो। तो आप में से कितने लोगों को यशस्वी होना है, जय हो जय हो जय हो, इसका मतलब आप जग रहे हो, पीछे भी हाथ ऊपर आ रहा है, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। देखो यवनों पशुओं पक्षियों मृगों आदि जानवर की जितनी भी योनियां हैं वो सब भी मरने के बाद यहां पर परम गति प्राप्त करते हैं, ये धाम की महिमा है। सर्प दंश द्वारा पशु द्वारा हत्या या अग्नि द्वारा जलन होके जिसकी मृत्यु होती है यानी अपघाती मृत्यु, इन शॉर्ट दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु, वो भी यहां मरने के बाद में भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। लेकिन मरने के पहले यहां पर जीना कैसे वो सीखना चाहिए, मरना तो आगे है बहुत, जिस प्रकार से जिएंगे उस प्रकार से मृत्यु होगी, जो जिस प्रकार से जीने की प्रक्रिया होगी उस प्रकार से मृत्यु की भावना होगी। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, कभी होगा जब यहां पर आप जीना सीखोगे, यहां जीना परम भाग्य की बात है, यहां आना यहां रहना यहां सेवा करना परम परम भाग्य की बात है। हरौ येषाम स्थिरा भक्ति भूयसी येषु तत्कृपा तेषाम एवा हि धन्यानाम मथुरायाम भवेद रति। पद्म पुराण के उत्तरखंड से वह श्लोक है, ये इसमें लिखा है हरि की कृपा से जिसको स्थिर भक्ति प्राप्त होती है वैसे ही स्थिर भक्ति धन्य भक्ति मथुरा में आने से प्राप्त होती है, मथुरा मंडल में आने से प्राप्त होती है। एनीवे ऐसे बहुत 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 सुंदर सुंदर स्थान है। हरे कृष्णा, देखो मकारे च थुकारे च रकारे च अंत संस्थिते निष्पन्नो मथुरा शब्द ओंकार से तत्सत्समः म तू र और बाद में अ र आ र अ, जिसके अंत में है ये चार मथुरा, ऐसे जिनसे निष्पन्न मथुरा शब्द होता है वो ओंकार प्रणव के समान है। जब हम मथुरा कहते हैं तो ओंकार उच्चारण करने का लाभ होता है। श्री कृष्णेर मथुरा मंडल श्री कृष्णेर मथुरा मंडल सर्वोत्तम विंशति योजन सीमा अति मनोरम। ये मथुरा मंडल जो है 20 योजन का बना हुआ है, एक योजन 8 माइल का होता है, इस प्रकार से अप्रोक्सीमेट 84 कोस का ये ब्रज मंडल है। स्मरंती स्मरंती मथुराम ये च मथुरेशम विषमपते सर्व तीर्थ फलम तेषाम स्याच्च भक्ति हरौ परे। हे नरपति, नंद संत पुराण में बता रहे हैं जो लोग मथुरा एवं मथुराधिप यानी कृष्ण ब्रज मंडल का स्मरण करते हैं वो सब लोग सर्व तीर्थों का फल और परब्रह्म श्री हरि की भक्ति का लाभ करते हैं। एनीवे बहुत बहुत दिव्य महात्म्य है इसका, हमारे लिए टेक होम मैसेज यही है जो यहाँ पर हम करेंगे उसका लक्ष्य का लाभ होगा, यहाँ पर जो अपराध करेंगे उसका भी लक्ष्य गुना दुष्परिणाम हमारे पर होगा। ओके ठीक है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। ये श्लोक राधा कृपा कटाक्ष इस स्तोत्रावली से स्तोत्र श्लोक संग्रह में से है। इसका संक्षेप में इतिहास है कि स्वयं शंकर भगवान ने इसको रचाया है। इसको रुद्र यामल नाम का ग्रंथ है, इसमें इसका उल्लेख है और स्वयं शिव रचित ये श्लोक हैं। और देखो ऐसा पति पत्नी का संबंध होना चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। इन्होंने राधा कृपा कटाक्ष की रचना करके अपनी पत्नी पार्वती को भेंट में दिया है, गिफ्टेड टू पार्वती। राधा रानी का पूरा गौरव है उसके अंदर, बहुत सुंदर। तो सबसे पहला शब्द क्या है, मुनिंद मुनिंद्र वृंद वंदिते। इसके दो अर्थ हैं, एक है मुनिंद्र श्री कृष्ण स्वयं, हाँ योगी नाम अपि सर्वेशाम, ऐसे बहुत सारे श्लोक भगवत गीता में भी है जो उसमें बताते हैं कि सबसे बड़े श्रेष्ठ योगेश्वर कौन है, कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, तो श्री कृष्ण का उल्लेख भी योगेंद्र के रूप में किया है, योगेश्वर के रूप में किया है। और दूसरा है मुनिंद्र वृंद यानी समुदाय, जो मुनियों का समुदाय है, जो साधुओं का समुदाय है, संतों का समुदाय है, वंदिते, वो राधा रानी को वंदन करते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, तो राधा रानी सबके लिए वंदनीय है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबके वंदनीय कृष्ण है, सब लोग उनकी प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, सारा साधन उनको प्राप्त करने के लिए है। वेद भी उनके लिए जानने के लिए लिखे गए हैं, उन्हीं को समझने के लिए लिखे गए हैं। लेकिन जिनको जानने के लिए सारे वेद शास्त्र संत मुनि ध्यानी तपी तपस्वी कर्मकांडी ज्ञानी सब प्रयास कर रहे हैं, वो भी किसी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और वो है राधा रानी। उनके भी कोई आराध्य है, कालिंदी तट कुंज मंदिरो गतो, हाँ द्वय अक्षर स्मृति, वो भी कालिंदी के तट पर यमुना किनारे के बैठकर आंख बंद करके मुख से राधे राधे और हृदय आंगन में उनके दो चरणों का ध्यान करते हैं, तब जाकर उनके कांति को परावर्तन परिवर्तन प्राप्त होता है, उनकी सांवली कांति जो है गौर कांति बन जाती है। इतना इस भजन में शक्ति है उनके कि सांवले रंग के कृष्ण जो है उनके नियंत्रण के बाहर, वो प्लान नहीं करते अभी मैं ये बोलूंगा और मैं गोरा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो अपना करते जा रहे हैं, परिवर्तन अपने आप हो रहा है, उनके नियंत्रण के बाहर हो रहा है। ही इज नॉट कंट्रोलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कंट्रोल्ड बाय द हायर पावर। ऐसे कृष्ण भगवान भी जिनका ध्यान करते हैं वो राधा रानी है, जिनका द्वय अक्षरी नाम पुकारना वो अपना भाग्य समझते हैं, जो उनका साधन है, जो उनका लक्ष्य है, जिनके लिए वो समर्पित है, जिन नाम का उच्चारण करने के लिए वो अपने आप को नुछावर कर देते हैं, वो ये राधा रानी है। मुनिंद वृंद वंदिते, वो जो राधा नाम है वो रा उच्चारण करते ही गर्भवास और उसके संबंधित कष्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं। गर्भवास का मतलब क्या है, लाइफ इन द वूम, गर्भ के अंदर जो हम लोग रहते हैं ना, अभी बहुत सुखी है हम लोग, गर्भ के अंदर बहुत कष्ट होता है, तो गर्भवास एक भयंकर कष्ट माना गया है। तो वो गर्भवास जो है वो रा केवल रा कहने से नष्ट होता है। रावण को ध्यान करके रा करेंगे तो नहीं होगा, वो राधा का ध्यान करके रा बोलेंगे तो होगा, तो रावण के नाम में भी रा है, हाँ। और धा कहने से क्या होगा, धावत्यैव स संभ्रमः, धा कहने से श्री कृष्ण संभ्रमित होकर वो पुकारने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। धावती एव, धावत धाव भाग रहे हैं उनके पीछे, कैसे, ससंभ्रमः, संभ्रमित होकर, अरे कौन मेरे प्रियतमा का नाम पुकार रहा है। बाकी वेदों में लिखा है कि जो नाम लेता है राधा और कृष्ण का, उनके पीछे सुदर्शन चक्र जो हमेशा सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहते, रनिंग बिहाइंड यू सुदर्शन चक्र। लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है, चक्रधारी श्री कृष्ण, वो भी स्वयं भाग भाग के आ रहे हैं। कृष्ण को पुकारना है तो बहुत कठिन है, लेकिन राधा को पुकारेंगे तो वो अपने आप देखेंगे। हाँ, आपके बेटे का नाम क्या है डॉक्टर प्रिया पाटिल? अनिरुद्ध। अभी आप बरसाना में आए हैं और उनको किचन से पुकार रहे अनिरुद्ध अनिरुद्ध, तो सबसे पहले कौन देखेगा? उसकी माँ देखेगी। उनका नाम तो अनिरुद्ध नहीं है, उनका नाम डॉक्टर प्रिया है। लेकिन जो हमारी प्रिय का नाम लेता है तुरंत हम पहले सुनते हैं उसको। मार्केट में अगर जा रहे हैं आप, मीरा रोड में या भाईकाला में, और कोई अनिरुद्ध पुकार रहा है तो आप बोले मेरे बेटे को कौन पुकार रहा है, आप पहले देखेंगे। उसी प्रकार से श्री कृष्ण को पुकारना मुश्किल है बहुत, वो देखेंगे भी नहीं, बहुत श्रूड है वो। लेकिन राधा रानी को पुकारते तुरंत मुड़ मुड़ के देखते हैं। उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए सबसे आसान तरीका राधा रानी को पुकारना है। बोलो राधे, जय जय श्री राधे। आशा है अगर हृदय हृदय से पुकारा होगा तो श्री कृष्ण भी सुनते होंगे उसको। तो मुनिंद वृंद वंदिते, एक अर्थ है कृष्ण वंदन कर रहे हैं उनको, और सारे मुनि समुदाय भी वंदन कर रहा है। त्रिलोक शोक हारिणी हारिणी, त्रिलोक शोक हारिणी, इसका अर्थ क्या हुआ? त्रिलोक में सब जगह शोक है। दो प्रकार के दुख होते हैं, एक होता है जो नहीं है वो नहीं है प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, है ना, कांक्षति यानी आकांक्षा कर रहे हैं, कुछ चाहिए मुझे, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, परदेश जाना है, गहना चाहिए, कुछ कान में हीरे का कुछ चाहिए, कुंडल नहीं मिल रहा है उसके पास है तो मुझे चाहिए, तड़प रहे हैं। वो तड़प में भी दुख होता है आकांक्षा। और एक दुख होता है वो होता है कि जो हमारे पास था वो खो गया। बरसाना कैंप में आए, मोबाइल खो गया, बहुत दुख होता है, शोक कहते हैं उसको। शोक यानी कुछ खोने पर होता है उसको शोक कहते हैं। और कांक्षति यानी जो नहीं है हमारे पास उसको प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं। बस सारे प्रकार के दुख जो है ये दो ही कैटेगरी में आते हैं, आप विचार करके देखो। तो त्रिलोक जो है भौतिक जगत का जो ये ब्रह्मांड है उसमें ऊपर सात है लोक, बीच में पृथ्वी मंडल है, नीचे छह प्रकार के निचले हिस्से हैं। ये 14 भुवन में केवल दुख ही दुख है। आप ब्रह्मा पुनरावृत्ति नो अर्जुना, सब जगह जन्म मृत्यु का जाल आवर्तन, पुनरावृत्ति नो अर्जुना, बार बार जन्म मृत्यु होते रहता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख का उगम नहीं है। हम लोग मेडिकल लोग हैं, हम लोग चारों चीज कवर करते हैं, जन्म भी कवर करते हैं, बर्थ हमारे पास में होता है, मृत्यु भी हमारे पास ही होता है, और बीमारी और बुढ़ापा उसमें सब हमारे पास ही आते रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सभी दुखों का निवारण करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर के पास लोग आते हैं। और हम लोग भक्ति वेदांत में मेडिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल इलाज करके ये सब लोग सब चीज़ का कल्याण कर देते हैं। जन्म होते ही प्रभुपाद जी का मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मृत्यु के साथ में एंड ऑफ लाइफ केयर देते हैं 2.5-3 घंटा, कभी कोई 7-8 घंटा भी देते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। और बीमारी तो हमारे यहाँ प्रोफेशन ही है, तो बुढ़ापे में बीमारियाँ होती है, कष्ट होता है, उसको भी हम संभालते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हमारे भौतिक जीवन के अनुभव का एक प्रमाण है। और त्रिलोक में ये मत समझना कि ब्रह्मा के पास दुख नहीं है, ब्रह्मा लोक में दुख नहीं है, डोंट थिंक लाइक दैट। इंद्र को दुख नहीं है, देवताओं को दुख नहीं है, देवियों को दुख नहीं है, देव ऋषियों को दुख नहीं है, डोंट थिंक लाइक दैट। सब जगह दुख ही दुख है। अगर इंद्र को दुख नहीं होता तो इंद्र फिर बार बार पृथ्वी में क्यों देखते, कौन तप कर रहा है, कौन तप कर रहा है, बार बार देख रहे हैं, क्योंकि पता है कि वो तप करेंगे तो मेरा सीट ले लेंगे, सिंहासन पे मुझे बैठना उतार लेंगे, वो बैठेंगे। आधा ध्यान पृथ्वी पर रहता है कि मेरा सीट जो है वो सिक्योर्ड रहे।
तो जो अपने स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र बना हुआ है, जिसको हर टाइम टेंशन होता है कि पृथ्वी पर कोई तप तो नहीं कर रहा है, तो क्या सुखी अवस्था है क्या? वो सुखी अवस्था नहीं है। बार बार किसी किसी को भेजता है नीचे, तप भंग करने विश्वामित्र मुनि के लिए मेनकाओं को भेजा, विभांडक के लिए और किसी को भेजा, ऐसे हर समय किसी किसी को भेजते रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। और वहाँ पर क्या टेंशन है, वहाँ पर वो भोग में इतने लिप्त रहते हैं, दुर्वासा मुनि आते हैं, माँ विष्णु की महाप्रसादी माला देते हैं, फिर भी वो इतने मग्न है भोग में, विलास में, कि वो माला को हाथी के पास देते हैं, हाथी पैरों में उसको कुचल देता है, फिर अपराध होता है, फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं इतने उद्दंड हो गए हो इंद्र बन के, मुझे अवहेलना कर रहे हो, मेरे महाप्रसादी को हाथी के पैरों कुचलवा रहे हो, जाओ तुम्हारा सब साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और कुछ ही देर में इंद्र आदि सभी देवताओं का साम्राज्य नष्ट होता है और उनको भाग कर गुफाओं में छुपना पड़ता है। ये सब कहाँ हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है, जहाँ पर आप जा चुके हो ऑलरेडी, उधर भी ये समस्या है। और एक बार नहीं, कई बार, कभी बलि महाराज का आक्रमण से, कभी हिरण्यकश्यपु के, कभी हिरण्याक्ष के, कभी इसके, कभी उसके, सब लोगों ने 14 भुवन पदाक्रांत किया था। किधर सुख है उधर? और एक बड़ी समस्या है उधर, क्षिणे पुण्य मर्त लोके विशंति, जो भी पुण्य का पूंजी वहां ले गए, एक एक अनुभव के साथ, सुख के साथ वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, क्षीण होते जा रहा है, पुण्य क्षीण होते जा रहा है। और बाद में जब पुण्य का सारा स्टॉक खाली हो जाता है तो क्या होता है? मर्त्य लोके विशंति, जहाँ से आए थे वहीं पर जाना है, फिर जन्म लेना है, वहाँ सुगंधित शरीर था, यहाँ बदबू वाला मिलेगा दोबारा, तो पहले था वापस मिलेगा। सुख नहीं है। नीचे क्या है? युवा भी स्वर्ग का आनंद है नीचे राक्षस लोगों के पास, लेकिन भगवान से दुश्मनी है तो उसका एक अलग कष्ट होता है, अलग पीड़ा होती है। चेतना जो होती ना, चेतना निगेटिव होने से आनंद नहीं आता है, आदमी बहुत जलते रहता है द्वेष से, क्रोध से, इससे उससे, युद्ध की भूमि भावना से सदैव। तो ना ब्रह्मा लोक में सुख है, ना पृथ्वी में सुख है, ना देवता लोकों में सुख है, ना पृथ्वी पर है, ना नरक लोकों में है। उसके आगे 27 पनिशमेंट के सेंटर्स है, वहां पर तो सुख का नाम ही नहीं है, वो तो यातना शरीर है, सुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां पर। बस तेल में जलो, गन्ने के मशीन में घुसो, हाँ लोहे का तप्त रस पियो, लोहे के तप्त रस के स्त्री को आलिंगन करो, ये सब है। तो वो त्रिलोक शोक हारिणी राधा रानी है, जो राधा रानी को भजता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, तो हरे राधा रानी है। जब वो उनको पुकारते हैं ध्यान पूर्वक, कॉन्शियसली, व्हेन यू से हरे यू आर कॉन्शियस ऑफ राधा रानी, तब आपके सभी दुखों का नाश होगा। आपका एक नाश तो नहीं हो रहा है, आपको दुखों का अनुभव होना बंद हो जाएगा। दुख होने पर भी आप दुख के परे रहेंगे, ये ज़्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि दुखों का नाश तो कर्मों के अनुसार होता है। कर्म होंगे तो ठीक है, सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा, वो तो आप टाल नहीं सकते। कर्मों के आने जाने के लिए कोई भी कंट्रोलर नहीं है भगवान के अलावा, तो भगवान भी कहते हैं भोगो। तो कर्मों का फल जो है उसका परिणाम हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन कर्मों के सुख दुख के परिणाम के परे हम जा सकते हैं। यू विल लर्न टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एज इट इज, कि भाई ऐसा ही है, नाक मेरा चपटा ही है, क्या करूं, एक्सेप्ट, तो दुख दूर हो गया। और अगर अरे अरे मेरा नाक, अरे मेरा नाक, दिन भर, हर दिन, हर रात दुखी दुखी रहेंगे आप, तो दुखी होना सुखी होना आपके विचार के ऊपर अवलंबन है। तो वो जो दुख निवारण है उस सर का, वो त्रिलोक का दुख निवारण राधा रानी करती हैं। आगे लिखा है प्रसन्न वक्त्र पंकज, उनका मुख कमल जो है सदैव प्रसन्न रहता है। वक्त्र यानी मुख, प्रसन्न वक्त्र पंकज कमल के जैसा रहता है। पंकज यानी कमल, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल जो होता है कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए हर दिव्य वस्तु को कमल की उपमा दी गई है। आपका मुख कमल जो है वो प्रसन्न रहता है सदैव कमल के जैसा। निकुंज भू विलासिनी, दो प्रकार के वन होते हैं, एक होता है वन कुंज जो सब जगह से खुला रहता है, गौचारण उसमें होता है, सब ब्रजवासियों की कॉमन लीला उसमें होती है, सबको प्रवेश है उसमें, ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को। तो कुंज है, तो निकुंज क्या है? निकुंज को सब जगह बंद होता है। फिर ये कैसा है? आप ऊपर से आ सकते हैं? नहीं आ सकते। यहाँ से आ सकते हैं? यहाँ से आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आपको वहीं से आना पड़ेगा, वही एंट्री है, बाकी सब बंद है, उसको निकुंज कहते हैं। उसमें केवल गोपियाँ जाती हैं, ग्वाल बालों को गैयाओं को प्रवेश नहीं वहाँ। तो निकुंज भू विलासिनी, वो निकुंज की जो भूमि है उसी पर वो शयन करती है, तो कोई संकोच नहीं है। ब्रजवासियों को भूमि पर शयन करने में कोई संकोच नहीं है। कालिया को भगवान ने मर्दन किया ना, तो कहते हैं बहुत लेट हो गया था, और सब लोग कालिया का भय देखकर भाग के नंदगांव से आए थे। बलराम जी का बर्थडे था, तो वो उधर बर्थडे का समारंभ छोड़ के सब लोग भाग के कालिया घाट पे आए। बाग में सबने भगवान ने देखा, सबने देखा भगवान नाच कर रहे कालिया के सर पे, उसको भगा देते हैं, सब कुछ हो गया। इतना करते करते लेट हो गया, बहुत नंदगांव बहुत दूर है। तो नंद महाराज राजा होने पर भी सभी ब्रजवासियों के साथ जमुना किनारे पे ही सो गए, और फिर वहां पर दावाग्नि निर्माण हुआ। फिर पुकारा भगवान को, भगवान ने उसमें दावाग्नि को पी लिया और सबको शांत कर लिया। उसी दिन की बात है ये दावाग्नि, यहाँ का दावान कुंड है ना, उसी की लीला है। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि नंद महाराज है वो, नंदगांव के राजा है वो, लेकिन आराम से ब्रजभूमि के रज में निवास कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई संकोच नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई पोजिशनल कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ नहीं। राजा रानी भी निकुंज के भूमि पर शयन करने में संकोच नहीं करती है, सदैव निकुंज के रज में निवास करती है, इस रज का महत्व जानते हुए। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी कौन है वो? ब्रजेंद्र, एक ब्रजेंद्र नाम है वृषभानु महाराज का, एक ब्रजेंद्र नाम है नंद महाराज का, दोनों का नाम। एक को कहा है ब्रजेंद्र भानु, यानी एक जो भानु है ब्रजेंद्र, वो वृषभानु महाराज की कन्या है वो, और ब्रजेंद्र सूनु यानी ब्रजेंद्र के पुत्र, सूनु यानी पुत्र, संगति, ये नंद महाराज के पुत्र के संग में ही पृथ्वी पर प्रकट हुई है, वृषभानु महाराज के घर में प्रकट हुई है, वृषभानु महाराज के हृदय के आंगन को प्रफुल्लित करने के लिए, बरसाना वासियों को आनंद से विभोर करने के लिए ये भगवान की अंतरंगा शक्ति वृषभानु महाराज के घर में प्रकट हुई है। और वहाँ पर नंद महाराज के घर में कृष्ण प्रकट हुए हैं, वो दोनों साथ मिलकर लीला कर रहे हैं। ऐसी राधा रानी जो कृष्ण के साथ ही प्रकट हुई है, कदा करिष्यसि माम, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमारा आखिरी लाइन होगी आज की। कदा, कब होगा? करिष्यसि माम, करिष्यसि मतलब कब करोगी, कब करोगी, कब करोगी, क्या करोगी, कब मेरी ओर कृपा कटाक्ष करोगी। कटाक्ष का मतलब है साइड लॉन्ग ग्लांसेस, तिरपा कटाक्ष यानी कटाक्ष आंखों से होता है। और कदा करिष्यसि हम, कृपा कटाक्ष की मांग कर रहे हैं वो, वो गुस्से से भी देख सकते हैं और कृपा से भी देख सकते हैं। राधा रानी की नजर जो है वो अनंत कृपा से भरी हुई है, अनंत कृपा का सागर है वो, अनंत करुणा का निधान है वो, कृष्ण से भी अधिक कृपा उसके अंदर है। वो उसका निर्माण कृष्ण से ही होता है, राधा रानी का, कृष्ण से ही राधा रानी के गुण निर्माण होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से ही निर्माण हुई है। लेकिन वही करुणा जिसके निधान सागर कृष्ण है, वही करुणा जब उनके अंदर से निकलकर राधा रानी में स्थित हो जाती है तो कई लक्ष गुना गुणित हो जाती है, कृपा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वही कृष्ण की कृपा है, जब राधा रानी में स्थित हो जाती है तो अनंत गुणित होकर प्रकट हो जाती है। इसलिए ऐसी कृपा कृष्ण भी नहीं कर सकते हैं तो राधा रानी करती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब करोगी ये राधा, कब करोगी कृपा। परम पूज्य राधानाथ महाराज जब हमको सबसे पहले 1986 में लेकर आए थे, खुद स्वयं ट्रेन से आए थे, और हम लोग भी अनरिजर्व्ड फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस से आए थे। अविस्मरणीय प्रवास हमने किया था, और हम लोग बहुत घंटों के बाद 28 घंटे के बाद मथुरा में उतरे तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने हमको स्वागत किया था मथुरा स्टेशन पर, और वहीं बैठकर एक प्रवचन दिया था, वेलकम टॉक। तभी वहाँ पर कोटा टाइल नहीं थी, बहुत गंदगी थी, लेकिन उस जगह पर बैठकर जो बात की थी वो अमर बात की थी। उन्होंने कहा था कि जिस समय हम मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं, राधा रानी की कृपा के लिए हृदय के अंदर के कोने में निरंतर प्रार्थना करते रहनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक भी क्षण आपका यहाँ पर व्यर्थ नहीं होना चाहिए, या तो सेवा कर रहे हैं या तो प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी बेफजूल की बातें नहीं कर रहे हैं। सारा फोकस कृपा याचना में है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब कृपा करोगी हे राधे, कब कृपा करोगी। जब होती है ना तड़प, जब तड़प होती है ना तभी कोई वस्तु प्राप्त होती है। आप भी बालक बहुत हट करता है, आप नहीं नहीं नहीं, लेकिन बालक जब हट करते 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 रोता है, भूखा रहता है, तो फाइनली आप उसको दे देते हो। अमूल्य वस्तु जो है वो हट करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, याचना करने के बाद, पुकारने के बाद ही प्राप्त होती है। महान वस्तु एक बार पुकारने से प्राप्त नहीं होती है। अगर एक बार पुकारने से प्राप्त हो गई तो आपको मन में उसकी महानता ही नष्ट हो जाएगी, तो ईजी हो गया ना आपके लिए। तो हम सब लोगों को अपने बरसाना निवास में निरंतर हृदय के अंदर के कोने में तीव्रता से राधा रानी की कृपा की याचना करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक बार बोलेंगे, कदा करिष्य सिहमाम कृपा कटाक्ष भाजनम राधे। थैंक यू वेरी मच।